दौला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर 12 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् मुनिसुवयजिनवसहम् सुवयमुनिवसह सन्तु अम्नमिं कम्माणुयोयमिणमो वोक्षमणे यत्थ गन्तगयम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और उसके 13वें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 101 पर हम आ गए, 101। अभी वर्गणा खंड का यहाँ कर्मानुयोग द्वार चल रहा है, और हमने उसमें से अलग अलग प्रकार के जो कर्मों की बात निक्षेप देखी थी, उसके बाद जो 6 कर्म है उसके संबंध में अपनी बहुत विस्तार से चर्चा चल रही है। कौन से 6 कर्म? हाँ, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, क्रिया, तप और इरियापत कर्म। तो पहले में ये हमने उसके यानी होते हैं ऐसा कहा, ओग में तो सभी होते हैं, फिर कौन से मार्गणाओं में कौन कौन से होते उसकी भी बात देखी। उसके बाद उसके हमने द्रव्य प्रमाण यानी संख्या देखी, क्षेत्र देखा, अब स्पर्शन। क्षेत्र और स्पर्शन में क्या अंतर है? क्षेत्र तो वर्तमान में एट अ टाइम कितना क्षेत्र व्यापा है, तो उसमें जो क्षेत्र में भी और स्पर्शन में भी मारणांतिक तो सब जगह लेते हैं, परंतु क्षेत्र में मारणांतिक थोड़े जीव होंगे जितने कर रहे हैं, तो बहुत जगह है जो यहाँ क्षेत्र लोक का असंख्यात्व भाग है, तो वहाँ मारणांतिक को भी असंख्यात्व भाग होता है, एक्सेप्ट कौन से, वो जो अलग अलग एक वायु का एक जल का एक वगैरह जो बादर अपर्याप्तम की बात है, हाँ, तो उनकी संख्या बहुत बड़ी है, असंख्यात लोक वाली संख्या बहुत बड़ी है, उनकी बात पूरे लोक में बताते हैं, क्षेत्र में भी। अब स्पर्शन में क्या लेना है? स्पर्शन में तो अतीत काल की बात, क्योंकि अतीत काल में कहीं ना कहीं से किसी न किसी जीव से जो कोई पॉसिबिलिटी है, तो बहुत सी ऐसी मार्गण है उसमें पूरा लोक भी घटित होता है। उसमें हमने देखा था कि 10 अपेक्षाओं लगानी है, उनका रहने का ठिकाना उसको स्वस्थान, स्वस्थान कहते हैं, विहार करके जहां तक जा सकते उसको विहारवत स्वस्थान कहते हैं। जैसे देव जो है नीचे तीसरे नरक तक गमन करते विहार करके जाते, तो नीचे
दो राजू
ने मध्य लोक से नीचे 2 राजू और ऊपर 6 राजू, ये उनका विहार का क्षेत्र है, 8 राजू, तो उसको कहेंगे 8/14, त्रस नाली का 8/14, यानी उसमें तो 8/14 ये तो घन राजू इतना उसकी एरिया हो जाती है। तो इस तरह से हमको उसको सोचना है, तो होगा एक स्वस्थान, स्वस्थान विहार वत स्वस्थान। फिर समुद्घात 7 प्रकार के, उसमें पहले वेदना समुद्घात, तो जीव की जो एरिया उसकी जो अवगाहना है वो इस तरह से 3 गुना और ऐसे 3 गुना बढ़ती, कषाय हाइट वाइज नहीं बढ़ती, कषाय समुद्घात में भी ऐसा ही बढ़ता है, और ये जरूरी नहीं कि पूरे 3 गुना बढ़े, हो सकता है एक ही प्रदेश बाहर, हाँ मैक्सिमम 3, एक प्रदेश 2 प्रदेश इस तरह से कितने बाहर। समुद्घात किसको कहना, तो मूल शरीर में तो प्रदेश ही है, बाहर भी निकसते हैं कुछ काल के लिए, उसको कहेंगे समुद्घात। तो वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, विक्रिया से दूसरा शरीर बनाना, तो उसमें तो आत्मा के प्रदेश तो इन कंटिन्यूएशन रहते हैं, तो उसको भी समुद्घात कहते हैं। औदारिक शरीर वाले भी विक्रिया करते हैं और वैक्रिक शरीर वाले भी करते हैं, तो वैक्रिक समुद्घात हुआ। मारणांतिक समुद्घात, मरण के अंतर्मुहूर्त पहले, जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक जीव के प्रदेश, जैसे विग्रह गति में वो मोड़ सहित जाता है, वैसे ही उसी पद्धति से वो वहाँ तक फैले रहते हैं अंतर्मूर्त तक, उसको कहेंगे मारणांतिक समुदाय। उसके बाद वहाँ तक पहुँच जाते हैं आत्म प्रदेश, मूल शरीर में भी है और वहाँ पर भी फैले हुए हैं, और फिर मूल शरीर से उच्चाटन होता है, एक एक मोड़ तक चले जाते हैं और फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। आपको बोलना है ना कुछ उसमें, बोलना माइक में।
आत्मा के प्रदेश वहाँ तक जाएंगे तो उसके साथ में तेजस शरीर और कारमान शरीर जाएगा, औदारिक शरीर जो है वो यहीं रहेगा, ये बात बता रही
है। ऐसा नहीं होता कि कर्म यहीं रहेगा और जी केवल प्रदेश ही गए, नहीं तो उसमें मुक्त मानना पड़ेगा, केवल ज्ञान मानना पड़ेगा उन्होंने। तो जहाँ जीव के प्रदेश जैसे उसका संचार होता है वैसे कर्म भी उसके साथ लगे रहते। हाँ हाँ, पूरा ऐसे स्ट्रेच हो गए ना, अभी ऐसा ही था, अभी उसके प्रदेश ऐसे एक दूसरे में अवगाहन हुए तो स्प्रेड अप हो गए और वहां तक फैलते हैं। पूरा का पूरा ऐसा बहुत बड़ा नहीं जाता कि जैसे हम कहेंगे नहीं जी, जैसे हाइट वाइज या जो इस तरह से चले जाएंगे। अभी इसको स्पर्शन किसको कहना उसकी बात चल रही, तो मारणांतिक समुद्रात हमने देखा था, फिर तेजस समुद्रात, शुभ तेजस और अशुभ तेजस, जो बाहर आने वाले उसको सबुद्घात कहते हैं। ऐसे तेजस शरीर तो हर एक के है। उसके बाद आहारक शरीर बनाते हैं, उसको आहारक समुद्घात कहते हैं। केवली समुद्घात तो वेल नोन है, मालूम है सबको, और एक उपपाद है, यानी जो अभी हमने देखा था कि जो मारणांतिक में प्रदेश फैले है, तो पहले मान लेते ना अभी दो मोड़ लेके ही गया है, तो प्रदेश कैसे फैले, पहले मोड़ तक, दूसरे मोड़ तक, फिर शरीर तक, यहाँ जहाँ जन्म लेना है। अब मारणांतिक के बाद मरण हो गया तो सब पहले समय में सभी प्रदेश पहले मोड़ तक आ गए, परंतु पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक और दूसरे मोड़ से शरीर तक ऐसे फैले हुए है अभी भी वहां पर प्रदेश, तो उसको कहेंगे वो उपपाद के एरिया, उसके अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो अपेक्षाओं लगाकर यहाँ स्पर्शन की बात होने वाली है, स्वस्थान स्वस्थान ने रहने का ठिकाना, और विहार वत स्वस्थान ने कहाँ तक जा सकते हैं विहार करके। विहार अभी अमेरिका तक जा सकते हैं, वो सब विहार की एरिया आपकी। मनुष्य लोक में अन्य भी कोई ले जाए आपको, मनुष्य लोक तक विहार कर सकते हैं ना आप। आपका क्षेत्र कितना होगा, मनुष्य लोक तक विहार होगा, जैसे अभी कोई विमान लेके ऊपर गया है तो कि अभी मेरू पर भी जाते हैं ना, कि ऊपर के इतने लाख योजन ऊपर तक भी जा सकता है जीव। अभी यहाँ तो ज्योतिषी तो 700-800 योजन ऊपर है, 900 तक है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, देखो 100 नंबर के पेज से दोबारा पढ़ते हैं नीचे। स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, हमने ओग ने पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। हाँ, नीचे से दूसरी लाइन, स्पर्शन अनुगम यानी अभी जो अधिकार है वो स्पर्शन का अधिकार है। निर्देश ने कथन दो प्रकार का है, ओग निर्देश यानी इन जनरल सभी जीवों में जहाँ कहीं लागू होता है उसको ओग निर्देश कहेंगे, और आदेश ने अलग अलग मार्गणाओं में अलग अलग बताएंगे। ओग से सब पदों का, क्योंकि ओग में सब पद है, अतीत और वर्तमान अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र के समान है। यहाँ इतनी विशेषता है कि हमने ओग में क्या क्या देखा था है क्षेत्र की, जो पहला कौन सा है था अपना प्रयोग, पूरा लोक, समवदान पूरा लोक, फिर अधकर्म पूरा लोक, उसके पश्चात क्रिया कर्म लोक का संख्यात प्रभाव, क्योंकि सम्यक दृष्टियों के रहने का ठिकाना। अब यहाँ क्रिया कर्म में क्या कहेंगे, स्पर्शन अतीत की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है, क्यों, ये विहारवत इसमें अपेक्षा लग गई, एक बात। फिर तप कर्म, तप कर्म की एरिया कहाँ होगी, तीन बात। हाँ, क्योंकि तप और एरिया पथ में तीन अपेक्षाएं लगती है, क्योंकि केवली के भी तप कर्म है, लोक का असंख्यात भाग, बहुभाग और पूरा लोक, तो ये तो ओग क्षेत्र के समान यहाँ पर भी लागू होता है, एक बात। डिफरेंस कहाँ है, क्रिया कर्म में, क्रिया कर्म में विहार करने वाले देवों की अपेक्षा 8/14 राजू वो हो जाता है, चौदह राजू ने 8/14 भाग कहे हैं, त्रसनाली का 8/14 भाग। अब मार्गणाओं में लगाएंगे तो गति मार्गणा की अपेक्षा, आपने वो मार्गणाओं के नाम देख लिए ना थोड़े देखो मार्गणा का अर्थ होता है जीवों की खोज, जीवों का हम कहेंगे क्लासिफिकेशन, संसारी जीवों का। तो गति की अपेक्षा जीवों को डिवाइड करना है, तो चार गतियां हैं। अभी उन्हीं पूरे ग्रुप को, अभी वो सब गति की बात भूल जाओ, उन्हीं जीवों को इंद्रियों की अपेक्षा डिवाइड करना है। तो हम कहेंगे एक इंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव, तीनद्रिय, चतुर्द्रिय, पंचेन्द्रिय, ऐसे जो मार्गणा है उसकी अपेक्षा उसके भेद होते हैं। गति में हमने चार गति में डिवाइड किया, पंचेंद्रियों में तो चारों गति के पंचेंद्रिय जीव उसमें आ गए। इस तरह से आपने वो करणानियोग परिचय पुस्तक में पढ़ा होगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, नरक गति में, नारकियों में, उसमें कौन कौन से पद होते हैं पहले ये नक्की करो। प्रयोग कर्म, समवदान और क्रिया कर्म, तीन हो गए। अभी यहाँ हमें अपेक्षा कौन सी लगानी है, अतीत काल की, स्पर्शन है। वर्तमान की अपेक्षा क्षेत्र के समान है, वर्तमान का स्पर्शन है ना, वर्तमान क्षेत्र ही है जैसा वो तो लोक का संघ। अतीत काल का आश्रय कर मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। अब मारणांतिक का कैसे घटित करेंगे तेजल, आप बताओ। उसको तीरियंच कहेंगे क्या, देखा हाँ, वो आने वाले को नरक का उपपाद कहेंगे, नरक का मारणांतिक कब कहेंगे, हाँ नारकी अभी है वो मरा नहीं है, नारकी मरने के पहले, और वो पूरी एरिया कब कवर होगी, अगर तीरियंच में जन्मता है तो, क्योंकि मनुष्य में जन्मने वाला बीच में 45 लाख योजन में से ऊपर आता है, इसलिए पूरी एरिया कवर नहीं होती जो मनुष्यों में जन्म लेने वाले। तीरियंचों में जन्म लेने वालों के मारणांतिक लेना और तीरियंच में से नरक में जाने वाले का उपपाद लेना। तो सातवां नरक 6 राजू नीचे है, इसलिए 6/14 कहेंगे। देखो यही कहा यहाँ पर, अतीत अपेक्षा प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की दृष्टि से क्रमशः कुछ कम 1/14 भाग। क्रमशः क्यों लिया, पहला नहीं, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, हर एक का अलग अलग। सातों की बात, केवल नरक की बात कॉमनली बतानी है तो 6/14 कहेंगे, एक एक नरक की अलग अलग बतानी है तो ये बताएं कि पहला नरक जो है कुछ कम 1/14, कुछ कम 2/14, कुछ कम 3/14, कुछ कम 4/14, कुछ कम 5/14 भाग प्रमाण स्पर्शन है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मैंने पहली पृथ्वी मैं भूल गई, मैंने ऊपर का छोड़कर नीचे पढ़ना शुरू किया, मैं फिर से पढ़ती हूँ। नहीं 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 बराबर, मैंने भूल करे, मैं नीचे पढ़ना शुरू किया मैंने,
वो 12 नंबर
क्या
नहीं, अरविंद भाई का 13 नंबर यहाँ पे नहीं पढ़ा है,
पर ब्रह्मा का है ना, ब्रह्मा के पुस्तक है ना अंदर। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, यहाँ रखना ऊपर, हाँ देखो हाँ लेके गई क्या ब्रह्मा, हाँ नहीं नहीं वो तो अभी आया नहीं है, आप यहाँ सामने इसके बाजू में बैठे। वो जब गए तभी अभी 12वें, हाँ वो लेना उधर बैठने का, उधर है उधर। हाँ देखिए अभी हम पढ़ते हैं 101 पेज पर, नरक गति में, मैं फिर से पढ़ती हूँ, नरक गति में नारकियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का स्पर्शन वर्तमान की अपेक्षा क्षेत्र के समान, यानी वर्तमान में तो लोक का असंख्यात भाग है। अतीत काल का आश्रय कर मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है, क्योंकि हम नारकी इन जनरल की बात कर रहे हैं। क्रिया कर्म का वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्योंकि चौथे समय दृष्टि रहने वाले उनकी रहने की एरिया कैलकुलेट करेंगे सभी नरकों की तो भी लोक का संख्या त्वाभाग होता है। न समय दृष्टि उनके तप कर्म मुनियों के होगा, क्रियाकर्म समय दृष्टि चौथे गुण स्थान से क्रियाकर्म लेते हैं। हाँ, अतीत स्पर्शन भी क्षेत्र के समान ही है। देखो अतीत स्पर्शन क्यों कहा क्षेत्र के समान, अतीत का अर्थ है कि मरकर जाने वाले। अभी समय दृष्टि भी मारणांतिक तो करेंगे, पर मारणांतिक करेंगे तो मनुष्य, देखो ऐसा नियम है, मनुष्यों में आने वाले वहां भले वो अंतिम बिल में भी वो पहले अंदर आएंगे और फिर वहां से मोड़ लेके ऊपर चढ़ेंगे तो 45 लाख योजन में से ऊपर चढ़ेंगे। भले ऐसे एक दंड उनका 6 राजू है परंतु वो 45 लाख योजन को क्रॉस करके बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, इसलिए वो कहे उसका लोक का असंख्या तो ही भाग हो जाता है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है यहाँ क्रिया कर्म का मारणांतिक और उपपाद पद नहीं होता। क्रिया कर्म का मारणांतिक नहीं होता क्योंकि सातवें नरक के जो समय दृष्टि, वहां भी समय दृष्टि होते हैं, वहां जाने के बाद एक अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो प्राप्त करने वाले भी कुछ जीव है परंतु मरण के अंतर्मुहूर्त पहले नियम से मिथ्यात्व में जाते हैं, मिथ्यात्व में ही आयु बंद करते हैं और फिर तीर्यंच जो हिंस्र श्वापद है उसी में जन्मते हैं। सातवें नरक का ये नियम है। छठे नरक से सम्यक तो लेकर मनुष्य में आ सकता है, इसलिए क्रियाकर्म का मारणांतिक नहीं है। उपपाद नहीं है यानी सम्यक्त के साथ कोई सातवें में उत्पन्न नहीं होता है। अरे सातवें की बात क्या ना, छठे पांचवें चौथे तीसरे दूसरे कहीं भरी उत्पन्न नहीं होते सम्यक्त के साथ। हाँ पहले नरक में सम्यक्त लेकर जाने वाले हैं वह क्षायिक होने चाहिए। अब एक एक पृथ्वी में अलग अलग बताएंगे। पहली पृथ्वी में अतीत और वर्तमान की अपेक्षा क्षेत्र के समान स्पर्शन है क्योंकि उसका उपपाद और मारणांतिक कितना होगा, मारणांतिक कितना होगा पहली पृथ्वी का,
80,000 नहीं 1,00,000 योजन में कुछ कम।
आप बताओ
पहली पृथ्वी का बिल कहाँ पे है,
कहाँ है बोलो ना आप।
1,00,000 योजन
पूरी पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी हो तो बताओ, 1,80,000 है। हाँ उसमें 1,000 योजन भी, फिर भी वो संख्यात योजन है, राजों में नहीं है, ख्याल में है ना।
मैं 1,80,000 को
मिलता यानी वो भी लोक का असंख्या, तो तीरंच मर के जावे या नारकी मारणांतिक करे तो भी वो संख्यात योजनों में होगा, लाखों योजन में भी होगा परंतु वो तो यानी तो असंख्यात भाग ही होगा, लोक का असंख्यात भाग होगा। अब दूसरी से लेकर छठवीं पृथ्वी तक वर्तमान की अपेक्षा सब पदों का क्षेत्र के समान, यानी वर्तमान एक समय की बात करेंगे तो लोक का असंख्यात भाग, अब अतीत काल की अपेक्षा बात अलग से बताएंगे। तथा अतीत अपेक्षा प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का, इसमें भी क्रिया कर्म को छोड़ दिया है, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की दृष्टि से क्रमशः ने अभी दूसरी पृथ्वी के लिए कुछ कम 1/14 भाग, कुछ कम 1/14 भाग लोक का कितना भाग हो गया,
कुछ कम 1/14 भाग लोक का
संख्या भाग हो गया। पर यहाँ तो डायरेक्ट कुछ कम 1/14 कहेंगे, कुछ कम 2/14 ये तीसरी पृथ्वी के लिए, कुछ कम 3/14 चौथी पृथ्वी के लिए यानी चौथे नरक के नार के, कुछ कम 4/14 पांचवी के लिए, कुछ कम 5/14 छठी के लिए, बाकी तो सातवीं की तो बात ऊपर बताई थी अलग से। क्रिया कर्म का म के ऊपर रफार बरोबर दे दो, ना छोटा का है वो बढ़ता गया ना, 1/1 देखो 1/14 भाग 2/14 भाग यानी 14 अभी त्रस नाली की एरिया कैसी है, 1 राजू 1 राजू और 14 राजू, उसमें से 1 × 1 × 1 तो 1 घन राजू हो गया, 14 का 1 भाग 14 के 2 भाग यानी 2 घन राजू, 14 के 3 भाग इस तरह से 3 घन राजू बढ़ते गया। और सातवीं पृथ्वी 6 राजू नीचे है तो 6/14 ये त्रसनरी का कुछ कम 6/14 ऐसे पूरा वाक्य है उसका, ये 6/14 कहने की पद्धति है। क्रियाकर्म का अतीत काल में भी क्षेत्र के समान लोक का संख्या तो अभाव है, क्योंकि वहां के छठे नरक के समय दृष्टि भी मनुष्य में ही आएंगे। समय दृष्टि सारे मरकर मनुष्य में ही आते हैं, उसको क्रियाकर्म वाले कहेंगे हम, परंतु वो बीच के एरिया में से ऊपर चढ़ेंगे, इसलिए उनका क्षेत्र कभी बड़ा नहीं होगा, तो लोक का संख्या तो अभागी है। अब आगे बढ़ते तीरियंच गति में। तीरियंच गति में तीरियंच कहने से पूरे एकेंद्र भी तीरियंच है, तो उनका क्षेत्र ही पूरा लोक है, तो स्पर्शन तो होना ही है। तीरियंच गति में तीरियंचों में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक है। क्रिया कर्म वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी तीरियंचों का क्रिया कर्म ने समय दृष्टि तीरियंच कहाँ है, वो पंचेंद्रिय तीरियंचों की बात है, संगी पंचेंद्रिय। रहने का ठिकाना कितना है, लोक का संख्या तो ये वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है। मारणांतिक पद की अपेक्षा, क्रिया कर्म में मारणांतिक लगा लो, यानी सम्यक दृष्टि तीरियंच मरकर कहाँ तक चले जा सकते हैं, हाँ तो 6 राज ऊपर तक जाते हैं, 16वें स्वर्ग तक। हाँ तो मारणांतिक पद की अपेक्षा अतीत स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। ये समझ में आती है ना बातें। पंचेंद्रिय तीरियंच त्रिके, देखो समय दृष्टि तीरियंच मरकर जावे तो सम्यक्तों के साथ मरने वाले तो देव में ही जाएंगे। अगर उनमें भी ऐसा हो जाता ना, किसी ने मनुष्य बांध दिया और बाद में समय दर्शन प्राप्त किया, तो सम्यक तो छूट जाएगा उनका। कुछ चारों गति की कोई भी आयु बांध सकते हैं, कोई भी आयु बंधी हो सम्यक तो प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है, परंतु अभी तीरियंचों में से सम्यक तो के साथ मरकर अगर जाना है, देवायु बांधी होगी तो ही वहां जाएंगे। नरकायु, मनुष्यायु या तीरियंच आयु पहले बांधी हो तो सम्यक तो छूट जाएगा। तो पंचेंद्रिय तीरियंच त्रिके सब पदों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। पहले तो तीरियंच इन जनरल बात की थी, इसलिए पूरा लोक कहा था। अतीत स्पर्शन, स्पर्शन ही हुआ, स्पर्शन सब लोक है। इतनी विशेषता है कि अधक कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक है। हमने देखा था अधक कर्म में एक जीव भी होगा तो ही पूरा लोक हो जाता है, क्योंकि अधक कर्म में हमने वो तो नौ कर्म स्कंधों की बात देखी थी। क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन सामान्य तीरियंचों के समान है, क्योंकि तीरियंचों में जो क्रियाकर्म कहा था वो पंचेंद्रियों की अपेक्षा बताई थी। पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्तक के, देखो इनमें क्या विशेषता होगी, क्रियाकर्म नहीं होगा, प्रयोग कर्म होगा, समवदान कर्म होगा और अधिक कर्म होगा। तो प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्त है, वो तो जहां कर्म भूमि है वहीं पर पाए जाएंगे। अतीत स्पर्शन सब लोक है। सब लोक क्यों है, हाँ मारणांतिक करके कहीं पर भी उत्पन्न होते पूरे लोक में, और वर्तमान में भले वो जीव असंख्यात है परंतु अतीत काल की अपेक्षा है, कहीं ना कहीं कहीं किसी न किसी जीव ने लोक के कोई प्रत्येक पॉइंट पर किसी ने जन्म लिया है, तो मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा भी ये बातें होती है। अधक कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक है। अधक कर्म में वो संख्यात भी जीव हो गए तो पूरा लोक घटित होता है, हमने पहले देखा था। अभी 102 नंबर के पेज पर आना। मनुष्य गति में, मनुष्य गति कहने से पहले में पहले यानी लब्धि पर्याप्त पर्याप्त मनुष्य नहीं सब मिलकर की बात होती है। वर्तमान का तो लोक का संख्या तो भाग है, वो केवल वो इरियापथ और तपो में हमने देखा था, केवली समुद्घात की अपेक्षा 3 पॉसिबिलिटी देखी थी। देखो मनुष्य गति में मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में सब पदों का अतीत और वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है। क्षेत्र में जिस जिस का जो जो पद बताया था वैसा ही। हाँ हाँ मनुष्य कहने से सभी पर्याप्त अपर्याप्त श्रीवेदी पुरुषवेदी सभी यानी मनुष्य इन जनरल, मनुष्य पर्याप्त कहने से अपर्याप्त उनको छोड़ करके बात, और मनुष्य नहीं कहने से भाव से स्त्रीवेदी है, वो भले द्रव्य से पुरुष हो या स्त्री हो, उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। होती ही ऐसा नहीं है, जैसे स्त्रियां है तो स्त्रियां द्रव्य से तो स्त्रियां तो है ही है, भाव से भी स्त्रियां ही है। इन जनरल एवरेज जो द्रव्य से स्त्री वो भाव से भी स्त्री है, परंतु ऐसी भी कुछ स्त्रियां हैं कि स्त्री होते हुए भी उनको स्त्री के प्रति आकर्षण है। तो जैसे पुरुषों में भी होता है होमोसेक्सुअल जिसको कहेंगे, पुरुष होते हुए उनको पुरुष के प्रति आकर्षण है, तो उसको कहेंगे भाव से स्त्री। द्रव्य से पुरुष होते हुए भाव से स्त्री है, ऐसे यहाँ तो मनुष्य नहीं कहने से, क्योंकि मनुष्यनियों में जो हम 14 गुण स्थान घटित करते हैं वहां तो द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री वालों की बात है वो, क्योंकि मनुष्य नहीं कहने से जो देखो यहाँ स्त्री को भी मोक्ष है कि नहीं है वो बात यहाँ नहीं होती। द्रव्य से स्त्री को पांचवें गुण स्थान से ऊपर का पुरुषार्थ ही नहीं हो सकता उसके। देखो सब पदों का अतीत और वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है, इतनी विशेषता है कि प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अतीत स्पर्शन सब लोक है। सब लोक क्योंकि मारणांतिक पूरे लोक में, कि मनुष्य भी मरकर एक इंद्रिय में चले जाते हैं, तथा मनुष्य अपर्याप्तकों का पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान स्पर्शन है। अतीत काल में उनका भी ले लेना है। हाँ लोक का संकेत होगा और उनका जो मारणांतिक की अपेक्षा पूरा लोक। अब देवगति में देवों में प्रयोग कर्म, देखो देवों में क्या विशेषता होगी नारकियों से, यहाँ विहार की बात भी आ सकती है ना। तो देवों में प्रयोग कर्म समवदान कर्म और क्रिया कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। वर्तमान उनके रहने की ठिकाना लेना। अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण, ये 14 के बाद कॉमा नहीं चाहिए, 14 भाग प्रमाण, यानी क्योंकि उनकी विहार की एरिया इतनी बड़ी है तो वो समय दृष्टि भी विहार करके जाएंगे तो उनका भी क्रिया कर्म का भी एरिया उतनी हो जाएगी। वो कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण है। अब ये क्रिया कर्म वाले को 9/14 नहीं होगा, परंतु अन्य जो जीव है कैसे लेना उनमें, इसे देव नीचे तीसरी पृथ्वी में विहार कर गए हैं और वहां से सम्मिथ्या दृष्टि है तो मारणांतिक करते हैं कहां तक, 8वीं पृथ्वी में जन्मने वाले, वही जन्मते ऐसी बात नहीं, एक केंद्रीय में जन्मने वाले मध्य लोक में भी जन्मेंगे, पर हमको बड़ी एरिया कैलकुलेट करनी है तो 8वीं जो ईशत प्रागभार भूमि है वहां वो मारणांतिक करेंगे, तो प्रदेश कहां से कहां तक फैले तो पूरे 8 है। और कभी ना कभी कोई ना कोई, क्योंकि अतीत काल इतना अनंत काल गया है तो उसके प्रत्येक पॉइंट में से किसी न किसी ने मारणांतिक किया होगा, इसलिए पूरी एक राजो बाय एक राजो और ऐसे 9 राजो, इसको 9/14 कहते हैं। हाँ प्रयोग कर्म, हाँ देखो देखो ये प्रयोग कर्म हम भी फिर देखते हैं। प्रयोग कर्म ने जो योग कोई ना कोई है, अभी देवों के कौन सा योग होगा, वैक्रिक का योग होगा ना, तो देव इन जनरल के अभी उसके एक एक योग की बात करेंगे तो योग मार्गणा में कथन अलग होगा। जैसे वैक्रिक मिश्र अवस्था में कोई विहार नहीं करेगा, परंतु हमारी मार्गणा कौन सी चल रही, देवों की, तो विहार करने वाले देव तो प्रयोग कर्म में उनके कोई ना कोई तो योग चल रहा है ना, मनोयोग है, वचन योग है, काय योग है, तो ये प्रयोग कर्म में उसको लेना है। और समवदान कर्म, समवदान का अर्थ क्या है, कर्मों का बंध हो रहा है, कभी 8 कभी 7, देवों के लिए ये दो ही ऑप्शन है, तो विहार के काल में आयु का बंध भी होगा
होगा
ना, और 7 कर्मों का बंध तो ऐसे ही है, यानी वो विहार के एरिया उन्हीं का क्षेत्र और स्पर्शन में आ जाती है। क्रिया कर्म तो सम्यक दृष्टि के है, तो सम्यक दृष्टि के भी विहार की इतनी एरिया, पर सम्यक दृष्टि में वो नव वाला मारणांतिक नहीं हो, सम्यक दृष्टि मरकर एक इंद्रिय में नहीं जाएंगे, वो तो मनुष्य में ही आएंगे। देखो इतनी विशेषता लिखिए, देखो इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। प्रयोग और समवदान में एक वो मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय में मारणांतिक करने वालों की अपेक्षा 9/14 कहा था, क्योंकि ऊपर की आठवीं पृथ्वी यहाँ मध्यलोक से ऊपर 7 राजू है और नीचे वो 2 राजू नीचे तक गए थे, तो टोटल 9 देखी हमने। सम्यक दृष्टियों में वो बात नहीं है, सम्यक दृष्टियों में केवल वो 8/14 है। इसी प्रकार भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और सौधर्म ऐशान स्वर्ग के देवों के कहना चाहिए, क्यों इनको अलग से बताते, बाकी भी देव विहार करेंगे परंतु इनके लिए तो ये 9/14 एरिया घटित होती है, क्योंकि एक केंद्रीय जाति का बंध और मरकर वहां जाने वाले यही जीव हो सकते हैं। सनत कुमार महेंद्र वगैरह जो पद्मलेशा वाले जो है वो एक केंद्रीय का बंध ही नहीं करते, हिरियंच का करते हैं, तो या तो पंचेंद्रीय तिरियंच में जाएंगे या मनुष्य में जाएंगे, उनके लिए 2 ऑप्शन है, इसलिए 9/14 वाला ऑप्शन उनमें नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सानत कुमार से लेकर सहस्रार तक के, यहाँ पर भी लिमिट ली सहस्रार तक, क्योंकि सहस्रार 12वां स्वर्ग है, उसके ऊपर जो 13वां 14वां 15वां 16वां जो है तो वो गमन करते हैं, पर कहाँ तक, मध्यलोक तक, वो नीचे नरकों में गमन नहीं करते, इसलिए उनके 8/14 नहीं कहेंगे, 6/14 कहेंगे। और ऊपर ग्रेवेक वगैरह गमन शक्ति होती है परंतु अपना विमान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो नीचे कभी आते नहीं है। अनुत्तर अनुदिशवासी और ग्रेवेकवासी वो तो यानी वो समोसरण वगैरह में भी नहीं आते कभी, 16 स्वर्ग तक के आते हैं, पर 13, 14, 15, 16 वाले मध्यलोक तक ही गमन करेंगे, यानी वो आएंगे तीर्थंकरों के समोसरण वगैरह, वो नहीं करेंगे। गमन शक्ति है पर उनके वो भाव नहीं आता नरक में जाने का, ये ऐसे नियम है कुछ। इसलिए कहते हैं सनत कुमार से लेकर सहस्रार तक, सहस्रार कितने नंबर का है, 12 तक के देवों में सब पदों का यही स्पर्शन है, किंतु इतनी विशेषता है कि यहाँ 9/14 भाग प्रमाण स्पर्शन नहीं है, क्योंकि वो एक इंद्रिय में नहीं जाते मरकर। आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्प के देवों के सभी पदों का स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। अभी उसका अर्थ समझ में आए, कुछ कम 6/14 क्यों कहा, वो विहार करके नीचे नहीं जाते हैं, मारणांतिक कहो या उपपाद कहो, वो भी 6/14 तिरेंच भले उसमें जन्मते हैं परंतु 6/14 में आ गए। यहाँ 8/14 भाग प्रमाण स्पर्शन नहीं है, ये क्यों नहीं है, पहले अनेक भागों में इसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है, तो यहाँ तो केवल क्या है और क्या नहीं वो बात बता रहे। अधस्तन अधस्तन ग्रेवेक से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों के तीनों ही पदों का अतीत और वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है, यानी सभी ग्रेवेक। ये अधस्तन अधस्तन 2 बार क्यों कहा अश्विन भाई,
ये नीचे के 3 है उसको अधस्तन 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 मध्यम और अधस्तन ऊपरी।
देखो ग्रेवेकों के नाम 9 ग्रेवेक है तो उसमें पहले मूल में 3 भेद करते हैं, कौन से,
अधस्तन
मध्यम और उपरिम। अभी हर एक के फिर और 3-3 तो अधस्तन में भी 3 अधस्तन 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 मध्यम और अधस्तन उपरिम, उसको मध्य अधस्तन को हिट्ठी में भी कहते हैं, हिट्ठी में मध्यम हिट्ठी में उपरिम ऐसा उसका नाम है। मध्यम के लिए मध्यम हिट्ठी में या मध्यम अधस्तन मध्यम मध्यम और मध्यम उपरिम, ऐसे उपरिम के भेद करेंगे तो उपरिम अधस्तन उपरिम मध्यम उपरिम उपरिम, ये 9 के नाम ऐसा है, उनके अपने अपने नाम है परंतु ये कथन करने की पद्धति है। ये 9 ग्रेवेक फिर उसके ऊपर 9 अनुदिश होते हैं और उसके ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं, इन सबको इकट्ठा लिया क्योंकि वो विहार करके अपनी जगह छोड़ते नहीं, अपने विमानों से कहीं जाते नहीं है। यहाँ पर जो अभी हम देखते हैं ना अभी अष्टानिका चल रहा है वो नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं वगैरह, कौन जाते हैं, कहाँ तक के जाएंगे? सोलवेश्वर तक के जाएंगे, नहीं सब जाएंगे ना, मध्यम लोक, मध्य लोक तक तो आते ही है वो, परंतु ऊपर के वो ग्रेवेक वगैरह वो नहीं आएंगे। अब आगे देखते हैं इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से। अभी तो गति मार्गणा हो गई, इंद्रिय मार्गणा में हमने उसके भेद है पांच भेद, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब पंचेंद्रिय कहने से उसमें चारों गति आ गई, अब पंचेंद्रिय कहने से उसमें वो तप कर्म इंद्रिया वो सब कुछ आ गया। अब देखते इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एक इंद्रियों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक है, क्योंकि एक इंद्रिय तो पूरे लोक में रहते ही है। विकलेन्द्रियों के उक्त सब पदों का स्पर्शन पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तकों के समान है, यानी उनका तो वर्तमान स्पर्शन तो लोक का असंख्यात्वा भाग है, अतीत काल में तो मरण की अपेक्षा, मारणांतिक की अपेक्षा पूरा लोक है। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है। वर्तमान में तो उनका रहने का ठिकाना लेना, सभी पंचेंद्रियों को लेना, कौन से देव, नार के, मनुष्य और तीन इंच मिलकर भी पूरी एरिया लोक का असंख्यात विभाग होता है। परंतु अतीत स्पर्शन, अतीत में दो अपेक्षा, एक विहार की अपेक्षा और एक मारणांतिक की अपेक्षा, कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण ये विहार की अपेक्षा और सब लोग प्रमाण है ये मारणांतिक की अपेक्षा। पंचेंद्रिय मारणांतिक करेंगे तो पूरा लोक, देवनार के तो पूरे लोक में नहीं जाएंगे, पर मनुष्य तीरेंश जो पंचेंद्रिय है मिथ्या दृष्टि वो तो सूक्ष्म में कहीं पर भी जन्म लेते हैं, तो पूरा लोक घटित हो जाता है। केवल ज्ञानियों की अपेक्षा, अब केवल ज्ञानियों के भी तो प्रयोग कर्म, उनके भी समय, ये तो प्रयोग कर्म तो होता ही रहता है, लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सब लोग प्रमाण स्पर्शन है, यानी केवल ज्ञानियों में भी तप कर्म है, ईर्ष्या कर्म है, वो तो प्रयोग कर्म है उसकी अपेक्षा। अधः कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोग प्रमाण, हमने देखा था कितनी भी संख्या क्यों ना हो अधः कर्म का स्पर्शन तो पूरा लोक है। ईर्ष्यापथ कर्म और तप कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण है, जैसे हमने पहले देखा था, वो तो क्षेत्र में भी देखा था हमने उसको। क्रियाकर्म की अपेक्षा, अब क्रियाकर्म में चारों गति के समय दृष्टि लेना है, उनका अपना रहने का ठिकाना लोक का असंख्यात भाग होगा, क्योंकि टोटल जीव पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अब उसमें क्या क्या अपेक्षा लगाए, हाँ अतीत काल की अपेक्षा, विहार और मारणांतिक। तो देखो
पंचेंद्रिय में टोटल जीव प्रतर के असंख्यात, पंचेंद्रिय में टोटल जीव प्रतर के असंख्यात, अपने पल्ले का असंख्यात,
क्रिया कर्म वाले तो। समय दृष्टि की बात, टोटल जीवों की बात नहीं, क्रिया कर्म किसके होगा, समय दृष्टि, वो पल्ले के असंख्यात विभाग होते हैं। तो वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग है, अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण, हमने उन्होंने तो डायरेक्ट बता दिया हमको समझना है ये विहार की अपेक्षा है। पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के, देखो क्रियाकर्म की अपेक्षा उन्होंने बताया, अब यहाँ मारणांतिक की अपेक्षा क्यों नहीं ली, ऊपर कुछ लिखा है क्या, किया कम्मस वट्टमाने ने लोगस असंख्य भागे अधि देन 8/14 भागा वा देसुन। अच्छा 8/14 में वो आ गया, क्योंकि तीरियंच मारणांतिक करने वाले 6 राजू तक जाते हैं, तो 6 राजू उनकी एरिया 8/14 बिहार के एरिया में उसकी एरिया आ गई। यहाँ फुल स्टॉप है क्या आपके उसमें, हाँ पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के, क्योंकि ये इंद्रिय मार्गणा चल रही ना, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त बता दिए, पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के वहाँ संभव पदों का स्पर्शन पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त कों के समान है, वो हमने देखा था। कितने संभव पद हो गए जरा याद करो फिर, पंचेंद्रिय पर्याप्तों में क्या क्या होगा? प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म, इतना ही। क्योंकि अपर्याप्त कहने से लब्धि अपर्याप्त लेना, जो मनुष्य तिर्यंचों में ही होते हैं, देवो नारको में लब्धि अपर्याप्त नहीं होते। अब ये हो गई इंद्रिय मार्गणा। अब काय मार्गणा की अपेक्षा भेद कौन कौन से हो गए लक्ष्मी? हाँ, यानी वो पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, कैसे अलग अलग नाम लेके पांच वो हो गए और एक त्रस काय, तो उसमें ये बात लगाएंगे। षटकायिक जिसको कहेंगे, काय मार्गणा के अनुवाद से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक जीवों के, अभी हम उसके भेदों की बात बात हैं, अतः उनका स्पर्शन कितना होगा तो पूरा लोक होगा, क्योंकि इनके सभी के सूक्ष्म जीव सभी पूरे लोक में हैं, तो पूरा लोक होगा। यानी उनमें क्या क्या हो गए, एक इंद्रियों में कौन से कर्म होते हैं? प्रयोग कर्म, समवदान और अधक कर्म, पूरा लोक होगा। अब उसके आगे उसके और डिविजन्स कर रहे हैं, इनके बादर और बादर अपर्याप्त जीवों के, इन सब कायिकों के अपने अपने बादर जीव और बादर अपर्याप्त जीवों के, तथा बादर निगोद और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के, तथा पांचों स्थावर कायिक सूक्ष्म और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म का अतीत और वर्तमान कालीन स्पर्शन सब लोक प्रमाण है। देखो क्या कहना चाहते हैं, वर्तमान में भी पूरा लोक कहा, किसका?
बादर
जीवों का। बादर जीवों का वर्तमान स्पर्शन पूरा लोक कैसे होता है? क्योंकि जो बादर अपर्याप्त जीव है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है असंख्यात लोक प्रमाण, और वो मरकर वर्तमान का उनका मारणांतिक और उपपाद पूरे लोक में होता है। इसलिए वर्तमान में भले वो उनका रहने का ठिकाना लोक का असंख्यात भाग में क्यों न हो, उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि वर्तमान का क्षेत्र भी पूरा लोक हो जाता है। इसलिए बादर और बादर अपर्याप्त लिए, बादर पर्याप्तों को अलग उसे बताएंगे। देखो सब लोग है ना, अभी पांचवी लाइन, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त और बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, तथा त्रस अपर्याप्त जीवों के, यहाँ संभव पदों का स्पर्शन पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के समान है, क्योंकि उनका रहने का ठिकाना लेना है और उन वर्तमान में भी अगर मारणांतिक करेंगे तो भी पूरा लोक कवर नहीं होता है, इसलिए वर्तमान उसका लोक का असंख्यात होगा और अतीत काल की अपेक्षा पूरा लोक, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी जीव ने मारणांतिक पूरे जल लोक में किया था। इतनी विशेषता है, देखो ऊपर किसको छोड़ा था, वायु का एक को छोड़ा था, है ना। इतनी विशेषता है कि बादर वायु का एक पर्याप्तकों के वर्तमान स्पर्शन लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। ऐसा क्यों कहा? वो पांच राजू तक पाया जाता है, तो पांच जो त्रसनाली की जो एरिया है पांच राजू तक, वो बादर वायु का एक पाए जाते हैं, इसलिए उसको यानी पांच घन राजू है ना, और लोक है 343 घन राजू, तो उसका वो संख्यात्वा भाग कही। त्रसद्विक के सब पदों का स्पर्शन पंचेंद्रिय द्विक के समान है। त्रसद्विक ने त्रस पर्याप्त और त्रस, त्रस अपर्याप्तों को ऊपर ले लिया था, क्योंकि जो त्रसद्विक में कौन कौन से पद हो गए बोलो?
त्रसद्विक के सभी पद
त्रस में सभी पद होगी ना यानी वो तप भी और इर्यापद भी सभी, क्योंकि त्रस नाम कर्म का उदय तो 14वें तक है। अब ये हो गई काय मार्गणा। योग मार्गणा की अपेक्षा जब भेद करेंगे तो मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी, और काय योगियों में भी अलग अलग औदारिक अवतारिक मिश्र, वैकिरिक विकिरिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमान काय योग वाले, बाकी चारों ये पांचों मनोयोगी वगैरह सबके लिए कथन सेम होगा, उसके एक एक योग के लिए अलग अलग नहीं होता है। तो योग मार्गणा के अनुवाद से पांचों मनोयोगी, पांच कैसे कहे थे, चार तो भेद है और एक तो सबका जो मिलकर ऐसा सामान्य, इसको पांचों कहते हैं। और पांचों वचन योगी जीवों के सब पदों का स्पर्शन पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के समान है। वर्तमान में तो लोक का असंख्यातवा भाग होगा, परंतु अतीत काल की अपेक्षा वो तो पूरा लोक हो जाएगा, क्योंकि मनोयोग और वचन योग की अवस्था में भी मारणांतिक तो हो ही सकता है उनका, उस अपेक्षा से जो जो जिस पद का जो पंचेंद्रियों में जो हमने देखा था वैसे यहाँ पर भी होगा, क्योंकि उनमें जो तप कर्म है उनमें जो है वो सभी अपेक्षा यहाँ लागू होगी, और देवों का विहार वाली एरिया भी उनके लागू होगी, क्योंकि देवों के भी मनोयोग और वचन योग तो होते हैं, यानी वो अतीत काल की अपेक्षा जहाँ जो योग्य है ना वो तो सब 8/14 होगी, 9/14 होगी, पूरा लोक होगा, वो जहाँ जो अपेक्षा हमने पंचेंद्रियों में देखी वो सब यहाँ लागू हो जाती है। इतनी विशेषता है कि इन योगों के रहते हुए केवली समुद्घात नहीं होता। हाँ, उसमें केवली समुद्घात नहीं होता, क्यों? केवली समुद्घात के समय में एक तो दंड समुद्घात में तो औदारिक का योग है, और फिर औदारिक मिश्र हो जाता है कपाट में, और फिर बाद में कारमान का योग होता है, उल्टे क्रम से वही होता है, इसलिए उस समय मनोयोग और वचन योग नहीं है, इसलिए वो लोक का असंख्यात बहुभाग और पूरा लोक वाली बात इसमें नहीं घटित होगी। तो मेरा ये प्रश्न है, मनोयोग और वचन योग में इरियापथ कर्म होगा कि नहीं होगा?
होगा
क्योंकि समुद्घात में नहीं है, बाकी 11वें है 12वें है रेगुलर, जिसको स्वस्थान केवली कहते हैं, एक होते हैं समुद्घात केवली, एक होते हैं स्वस्थान केवली, तो उनके तो इरियापथ है कर्म। तो इतनी विशेषता हमने पढ़ ली काय योगी जीवों के। अब काय योग कहने से उसका कोई डिफरेंस किए बिना काय योग ले लिए, तो काय योगी जीव कहाँ रहते हैं?
पूरे
लोक में, क्योंकि एकेंद्रीय ना सारे। तो औदारिक है कि वैकरे के हमने डिफरेंस नहीं किया, तो पूरे लोक में। तो काय योगी जीवों के सब पदों का स्पर्शन ओग के समान है, क्योंकि काय योगी कहने से उसमें सभी यानी सभी पद आ गए उसके अंदर। औदारिक का अभी एक एक उसका एक एक डिफरेंस यानी एक एक भेद देख रहे। औदारिक काय योगियों के सब पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। अब औदारिक कायोगी भी पूरे लोक में, क्योंकि एकेंद्रीय भी ना सूक्ष्म भी पर्याप्त जीव है, उनके तो औदारिक कायोग होगा, पूरे लोक में तो है ही है, तो प्रयोग है समवदान है ऐसे अधक कर्म तो होता ही होता है पूरे में, तो क्षेत्र के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म का अतीत स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। देखो लक्ष्मी जी, आप कहेंगे औदारिक काय योगियों का क्रियाकर्म का अतीत स्पर्शन, औदारिक काय तिर्यंच देव में मारणांतिक करेंगे सोलवे स्वर्ग तक, तो कुछ कम 6/14 भाग है। औदारिक मिश्र काय योगी जीवों के वहां संभव सब पदों का, औदारिक मिश्र में कौन सा पद नहीं होता है? तप कर्म उसमें केवली को स्वीकार किया गया है, तप और इरियापद
दोनों,
तो कपाट अवस्था में वो भी होगा उनका।
औदारिक मिश्र में तो इसे तो लोक का संख्यात्व भाग,
देखो प्रयोग है समवदान है अधक कर्म है क्रियाकर्म औदारिक मिश्र में होगा।
हाँ,
क्षेत्र के समान है इसलिए कहा क्योंकि वो तो लोक का असंख्यात भाग होता है। क्योंकि वो कपट अवस्था में भी लोक का असंख्यात भागी होता है उसका। वैक्रिक कायोगी जीवों में, अभी वैक्रिक कायोगी पलटने के पहले बताओ कौन बताना चाहता है, आप बताएंगे? वैक्रिक कायोगी है तो उनका हमें वर्तमान का स्पर्शन कितना होगा? हाँ, और अतीत
तो नीचे जाएंगे,
देखो उसमें विहार जाएंगे तो 8/14 और वैकृत कायोग में मारणांतिक करेंगे तो 9/14। वैकृत कायोग इतना अपना है। अब वैकृत कायोग में क्रिया कर्म वाले जीवों का विहार वाली बात होगी वो 8/14 में हो गया। अब दूसरी बात, वैकृत कायोगियों में रेगुलर मारणांतिक करने वालों की एरिया कितनी होगी?
नहीं नहीं, नीचे 6 राज्य और ऊपर 5 राज्य। नीचे 6 राज्य
उल्टा उल्टा नहीं, नीचे 6 राज्य,
नीचे 6 राज्य और ऊपर वो नहीं, ऊपर तो वैक्रिय कायोग से तिरियन पे 12वें शॉर्टकट लेना है।
हाँ, परंतु मिथ्या दृष्टि ऊपर से 6 राज्यों तक के मिथ्या दृष्टि नीचे जाएंगे ना तिरियंचन।
अनुत्क्रमण कारण कुत्ता तो खाली मनुष्य में आएंगे,
वो मनुष्य में आएंगे, विहार करके वहाँ गया है और वहाँ से जाएंगे तिरियंच में। हाँ,
तो 12 राज्य
अभी हमने देखा नहीं, देखेंगे। वैकृत कायोगी जीवों में सब पदों का वर्तमान कालीन स्पर्शन क्षेत्र के समान है। अति स्पर्शन कुछ कम 8/14, 12 नहीं 13 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वो एक इंद्रिय में भेजना है ना 7 राज्य,
9 और 6
वो साथ में सब कवर हो गए।
नहीं, 9 और अरे
ऊपर 7 राज्यों, नीचे से
6 राज्य।
अति स्पर्शन कुछ कम 8/14 वो तो उनका विहार की एरिया है, और कुछ कम 13/14 भाग प्रमाण है। फिर से 13/14 देखो, देव मारणांतिक करते हैं तो देव मारणांतिक 8वीं पृथ्वी में जाने वाले, यानी मध्यलोक से 7 राज्यों, हमने नीचे से 9 देखा था, परंतु वो नारकियों के एरिया में कवर होगा, होने वाला है। अब 7वें नरक के नारके भी तिरियंचों में मारणांतिक करते हैं, वैकृत कायोग में करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ उपपाद नहीं लेना है, उपपाद में तो उनका तो कारमान का योग होता है, इसलिए यहाँ मारणांतिक लेना है। तो वैकृत कायोग में उन्होंने मारणांतिक किया तो नीचे से 7वें नरक के नारकियों में तिरियंचों में किया, तो 6 राज्यों एरिया हो गई। नहीं, अतीत काल की बात है, नाना जीवन की, क्योंकि अनंत। हाँ, अब मध्यलोक से 7 राज्यों तक, यानी 7 और 6 मिलकर 13 राज्य हो गए। इतनी नहीं विशेषता है कि, वो तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा हमने ये एरिया घटित की, इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का स्पर्शन 13/14 भाग प्रमाण नहीं है। ये नहीं है कहते छोड़ दिया, तो क्रिया कर्म का स्पर्शन वैकृत कायोग में है, तो देव देव जो है अपने अपने एरिया में से मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले लिए
8/14
उनका विहार का ही एरिया घटित करने 8/14। इन 13/14 नहीं है, 8/14 में आ गए सब, क्योंकि विहार में उन्होंने मारणांतिक इस तरह से ले सकते हैं। वैकृत मिश्र कायोगी जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्योंकि वैकृत मिश्र कब होगा? ये देव और नारकियों में वहां गए, पहुंच गए हैं, और वहाँ उनका जो निवृत्ति पर्याप्त अवस्था चल रही, अपने अपने उपपाद क्षेत्र में, देव अपने उपपाद शैया में है और वो नारके अपने वो उपपाद की जो उनके एरिया है बिलों के छतों में है, तो उनकी एरिया कितनी है? तो लोक का असंख्या का भाग।
मिश्र में हम लोग उपपाद देख सकते हैं ना, रुजु गति के जाने के अपेक्षा।
हमने उपपाद कहाँ बताया?
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ,
वैकृत मिश्र में उपपाद लेंगे तो उनकी एरिया जहाँ वो उत्पन्न हो रहे वहीं पर लेना है। उपपाद की एरिया बड़ी कब होती है? मारणांतिक का दीर्घ दंड होगा तब।
अच्छा, एक समय में पहुंच जाते
हैं। अब वो पहुंच ही गए हैं तो उनकी जो उपपाद की शैया की एरिया उतनी लेनी है, पूरे बिल की या विमान की भी एरिया नहीं लेनी है। उत्पत्ति के स्थान तो थोड़े हुए ना, पूरे पूरे विमानों में उत्पत्ति स्थान नहीं उनके, तो उसकी एरिया और भी छोटी होगी। तो वैकृत मिश्र हो गया। आहारक द्विक कायोगी जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्योंकि आहार अभियुक्त तो मुनिराज कर रहे, छठे गुणस्थानवर्ती है, तो वो आहार का योग भले उनके प्रदेश फैले है, पर कहां लोक के बाहर, यानी मनुष्य लोक के बाहर नहीं जाएंगे। आहार शरीर बना के अगर गमन भी होता है तो 45 लाख योजन के अंदर ही होगा उनका, तो लोक का असंख्यात अभागी होगा। कार्मण का योगी जीवों में स्पर्शन क्षेत्र के समान है। कार्मण का योगी जीव तो पूरे लोक में फैले हुए हैं। इतनी विशेषता है कि अब कार्मण का योगी में क्रिया कर्म वाले, यानी सम्यक दर्शन के साथ अन्य भव में जाने वाले जीव लेना है। अतीत कालीन स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। ये तीर्यंच 16वें स्वर्ग में जाने वालों की अपेक्षा है। आप कहेंगे मनुष्य भी तो जाते हैं, मनुष्य जाएंगे तो अपनी अपनी एरिया में से ऊपर चढ़ेंगे, तो मनुष्य सम्यक दृष्टि की एरिया इतनी नहीं घटित होती। ये तीर्यंचों के जाने वाले की अपेक्षा, तीर्यंच मरकर 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, सम्यक दृष्टि जो है ना पंचम गुणस्थान वर्ती।
यह तप कर्म का भी पूरा लोक लेना है ना कर्मण का योग में।
कर्मण का योग में वो तो क्षेत्र के समान लिया ही ना, यानी लोक का असंख्य। हाँ, क्रियाकर्म में ये बात होती है। अब ये तो हो गया ना, क्या क्या कर्मण, हाँ पूरा लोक
कभी भी ले
पूरा लोग, क्योंकि एक इंद्रियों के भी तो कर्मण का योग, एक इंद्रिय में जो इतने मरकर जाने वाले एक भव से दूसरे भव, तो हमेशा ये अनंत जीव कर्मण का योग में होगी अनंत, क्योंकि हर समय वो तो निगोद राशि भी मर रही है सब, इतने अनंत जीव वो यानी मोड़ वाली गति से जाएंगे तो कर्मण का योग तो होगा ही होगा। अब वेद मार्गणा के अनुवाद से, अभी तक हमने कौन सी मार्गणा गति देखी, इंद्रिय काय योग। अब वेद मार्गणा में देखो इसके भेद कौन से है, स्त्री वेदी है, पुरुष वेदी है, नपुसक वेदी और अपगत वेदी है, चारों की अपेक्षा से बात करेंगे यहाँ पर। अपगत वेदी यानी वेदों का उदय का उदय मिट जाता है, 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक वेद का उदय है, उपशम श्रेणी में उसके ऊपर है ही नहीं है, परंतु जब लौट के आएगा तो फिर वेद का उदय शुरू हो जाएगा 9वें में लौट कर आने पर, यानी 9वें के अंत में उतरते समय अंत, यानी अभी वो 8वें के सन्मुख वाला है। ऐसा क्षपक श्रेणी भी 9वें के पहले भाग तक वेद का उदय है, ऊपर है ही नहीं है, और फिर वो तो अरिहंत होकर तो मोक्ष जाने वाला है। तो अपगत वेदियों के गुणस्थान कौन से है, 9वां का दूसरा भाग से लेकर ऊपर के सभी, उसको अपगत वेदी कहेंगे। तो उनमें जो जो पद संभव है वो सब बताएंगे वहां पर उनके लिए। हाँ, तो उनमें कौन सा कर्म नहीं होगा,
अपगत वेदी में नहीं लेना है,
क्रिया कर्म नहीं होगा।
चार से सात गुण,
क्योंकि हमने देखा श्रेणी वालों को क्रिया कर्म नहीं, तप कर्म है वहाँ पर। हाँ, एरिया भी है तब भी। देखो अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों के, पहले में पहले इनकी संख्या और कहाँ रहते हैं, वो तो पंचेंद्रियों ही होते हैं, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी, नारके तो छोड़ो, मनुष्य तीर्यंच और देव में, परंतु उनकी रहने की एरिया कितनी है लोक का संख्या का। अब स्त्रीवेदी पुरुषवेदी कहने से उनकी विहार के एरिया भी कैलकुलेट करनी है, और मरकर मारणांतिक पूरे लोक में होगा उसको भी लेना है। तो स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है, उनका रहने का ठिकाना। अतीत स्पर्शन 8/14 भाग प्रमाण, ये विहार है और सब लोक है वो मारणांतिक है, मानदंतिक कहो उपपाद कहो, अधक मानांतिक स्त्री वेदी जो है मनुष्य और तीर्यंच, मानांतिक सूक्ष्म केंद्रों में करेंगे, अतीत काल की अपेक्षा लगानी है, है ना। वहां जाने पर वो नपुसक वेदी हो गए, पर मानांतिक में उनका जो वेद का उदय है वो उदय रहेगा। देखो बंध की बात अलग है, वहां नपुसक वेद में जन्मने वाले मारणांतिक में नपुसक वेद का बंध कर रहे हैं, परंतु उनका अपना उदय कैसा चल रहा है, स्त्री वेद या पुरुष वेद का, देखो क्या कहते हैं वेद मार्गणा के, फिर पढ़ती हूँ मैं, वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्रीवेदी पुरुषवेदी जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात, वर्तमान के क्योंकि उनकी संख्या असंख्यात में है, अतीत स्पर्शन 8/14 भाग प्रमाण है, ये विहार की अपेक्षा, और सब लोक है वो मारणांतिक की अपेक्षा। अध कर्म का, अध कर्म तो हमने देखा था स्पर्शन सब लोग होता ही है, अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक है क्योंकि उसमें नौकर्म स्कंध को लेना था। तप कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, तप कर्म के हमने देखा था लोक का संख्यात भाग असंख्यात बहुभाग, हाँ क्योंकि वह अरियंतों के भी है तप कर्म एरिया केवली समुद्रात में, हाँ वेद वालों में नहीं आएगा बरोबर वेद वालों में नहीं होगा। तप कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है
8/14
क्योंकि जब तक वेद का उदय है तो नौवा गुण स्थान है तो लोक का असंख्यात भाग है। इसी प्रकार क्रिया कर्म का स्पर्शन भी जानना चाहिए किंतु इतनी विशेषता है इसका अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। क्रिया कर्म में देवों को लेना, विहार वाले देवों को, और मारणांतिक उसी एरिया में कवर हो जाता है 8/14 में। नपुसक वेद वाले जीवों के वहां संभव पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, नपुसक वेदियों का रहने का ठिकाना ही पूरा लोक है क्योंकि एक इंद्रिय पूरे लोक में है। इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। इसको बताएंगे कैसा? हाँ लक्ष्मी, हाँ नपुसक वेदी देवों में कहाँ से आए? हाँ तीर्यंच नपुसक वेद वाले हैं, 16वें स्वर्ग तक समय दृष्टि है ना, 16वें स्वर्ग तक मारणांतिक होगा उनका। तो किसी क्रिया नपुसक वेदी को क्रिया कर्म होगा क्या उपपाद में?
नपुसक वेदी कहाँ होगा ना?
हाँ
पहले नरक के,
पहले नरक में, और उसकी एरिया तो संख्या थी योजन हो गया। अपगत वेद वाले जीवों के वहां संभव पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। अभी अपगत वेद वाले वहां के संभव कौन कौन से पद हमने देखे थे, क्रिया कर्म रहित बाकी तब होते हैं। क्षेत्र के समान ने लोक का असंख्यात भाग बताया था, और क्षेत्र में जहां पर वो इरिया पत्थर तप कर्म की बात बताते हैं तीन उसके जो है वो वहां पर भी हो जाते हैं। अब कषाय मार्गणा के अनुवाद से देखो, कषाय मार्गणा में क्रोध मान और माया 9वें गुण स्थान तक लेना है, और लोभ 10वें गुण स्थान तक लेना है एक बात, और बाद में अकषायी मार्गणा भी कहनी है। तो कषाय मार्गणा के अनुवाद से चारों कषाय वाले जीवों के सब पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है,
पूरा लोक।
अभी पूरा लोक है ना कहे, क्योंकि वो सारे सूक्ष्म है केंद्रीय भी, उनके भी चारों कषाय वाले तो है ही है। इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का, अभी समय दृष्टि जो है वो भी चार, अभी जो समय दृष्टि में जो हमने क्रिया कर्म की एरिया बताई थी वो यहाँ पर भी होगी, कौन सी विहार वाली भी होगी, मारणांतिक भी होगी। तो क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है, 8/14 में वो तो मारणांतिक वो सब कवर हो गया। कषाय रहित जीवों के, और कषाय जिसको कहा हमने, यथा संभव पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, जैसे हमने अपगत वेदी में देखा था वैसे अकषाय में भी लागू करना है।
तो
मारणांतिक में 6/14 में हो जाता है ना, पर इसी 8 में वो 6 इंक्लूड हो गए, इसलिए उसका अलग नहीं कहना।
नहीं अकर्षाई
क्या कहते हैं,
अकर्षाई जीवों में अधकर्म लेना,
अकर्षाई जीवों में होगा ना,
नहीं बराबर है पर 10 फीट के ऊपर अधकर्म
क्या क्या हुआ,
अकर्षाई जीव बिन सुनो 11, 12, 13, 14
हाँ
अधकर्म औदारिक शरीर की अपेक्षा
निकालो, औदारिक शरीर का ग्रहण तो चल रहा है ना, जहाँ हमने कहा कितने होते हैं ना उसकी बात निकालो, सत प्ररूपणा में 91 के बाद है आरक का ही। नहीं उनके कौन कौन से होते हैं ये उनको देखना है,
क्रिया कर्म नहीं है पर पादा कर्म है कि नहीं वो पूरा
92 में कसाई लिया ना उसमें
नहीं? नहीं लिया ना,
शुक्ल लेशा वाले नहीं, नहीं वैसा वहां नहीं, मैं क्या कहती थी आपको कहाँ कौन से सत प्ररूपणा देखनी है ना आपको, हम 91 से शुरू हुई थी बात,
अरे 92 में बताया पर अकर्षाई जीव का अलग नहीं बताया,
अपगत वेदी और अकर्षाई देखो ना, सूक्ष्म सांप्राय की बात है वहाँ 4 प्रश्न, अकर्षाई केवल ज्ञानी वगैरह
यथाख्यात
के समान होते हैं,
और
यथाख्यात में ओक के समान है, इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म नहीं है, वही बात अभी हमने देखी थी अपगत वेदी में,
कर्म लेना पड़ेगा,
यानी क्रिया कर्म छोड़कर बाकी सब
बाकी का 5 है,
है। नहीं कोई क्वेश्चन हो जाता है तो जरूर हम रेफर करके फिर समाधान करेंगे ना, देखो कषाय रहित जीवों के कषाय रहित जीवों के यथासंभव पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, तो जहाँ वो इरियापद तप का जो बताए 3 भेद और बाकी सब सब हो जाएगा, अधकर्म का वैसे भी पूरा लोक होता ही होता है। अब ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से, ज्ञान मार्गणा में तो कैसे भेद करेंगे, जो 8 पर्याय होती है ज्ञान की, वैसे कुमति कुश्रुत विभंग ज्ञानी, तो कुमति कुश्रुत का तो पूरा लोक है ही है ना, विभंग का कितना होगा, लोक का और 8/14 भी होगा, 9/14 भी होगा, और पूरा लोक भी होगा मारणांतिक
विभंग ज्ञानी,
मनुष्य 3 विभंग ज्ञानी मरकर सूक्ष्म में, हाँ है मनुष्य 3 के है, मारणांतिक भी है, मरण है परंतु निवृत्ति अपर्याप्त में किसी को, यानी पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले विभंग ज्ञान उत्पन्न नहीं होता किसी को,
उपपाद में नहीं,
6 पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात ही होगा वो, उपपाद में तो है ही नहीं है, मारणांतिक में हो सकता है, और मनुष्य 3 विभंग ज्ञानी सूक्ष्म में उत्पन्न हो सकते हैं, यानी वहां तक मारणांतिक करेंगे वो, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो ज्ञान मार्गणा के अनुसार मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी जीवों में, यानी मिथ्या दृष्टियों की बात है, यहाँ तो ज्ञान मार्गणा है ना इसलिए उसको हम मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे, उसको हम मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी कहेंगे, सब पदों का अतीत और वर्तमान कालीन स्पर्शन क्षेत्र के समान ने पूरा लोक, विभंग ज्ञानियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग, क्योंकि विभंग ज्ञान संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टियों के होगा, पहला दूसरा दोनों गुण स्थान है, परंतु उसकी संख्या तो रहने का ठिकाना लोक का संख्या का भाग है। अतीत स्पर्शन में उनका विहार भी लेना भी देवों का कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण, अब कुछ कम 13/14 भी लेना, 9/14 के बदले 13/14 क्यों? अभी नारकी भी विभंग ज्ञान में वो तीर्यंचों में मारणांतिक करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको भी लेना। देवों ने ऊपर 7 राज्यों तक किया और नारकियों ने बीच मध्य लोक तक किया,
छे
तो 7 और 6 मिलकर
13
हो गए, और सब लोग प्रमाण है। सब लोग यानी मनुष्य तीर्यंच विभंग ज्ञानी वाले पूरे लोक में मारणांतिक करेंगे, उसकी अपेक्षा से लेना। अब अधकर्म का स्पर्शन ओघ के समान है। अधकर्म हमने देखा था कि पूरा लोक होता है, स्पर्शन में तो पूरा लोक लेते हैं सब जगह, अधकर्म एक भी जीव होता पूरा लोक होता है। अब ज्ञान मार्गणा में आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में अब इनके गुणस्थान कौन से? 4 से 12। सब पदों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, क्योंकि इनकी वर्तमान की जो रहने की जो जगह है तो लोक का असंख्यात भाग होगा। अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग, ये विहार वाले देवों की अपेक्षा, तो इसमें सभी पद हो गए ना, 6 के 6 पद हो गए, प्रयोग होगा, समवदान होगा, अधकर्म होगा, क्रिया कर्म तो होगा और तप और इरियापद भी होगा, तो सब पदों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग है। वो इरियापथ में लोक का बहुभाग और पूरा लोक लेना 12वें गुणस्थान तक की बात है, केवली समुद्घात को नहीं लेना, पर इरियापथ को लेना, इरिया और तप दोनों लेना, पर केवली समुद्घात को यहाँ इंक्लूड नहीं करना। अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। इरियापद कर्म और तप कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी लोक का असंख्यात भाग ही लेना, ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक के ही जीव लेना है और इरियापद है उनको, परंतु उनके जो मनुष्य लोक में ही रहेंगे वो। अधक कर्म का स्पर्शन ओघ के समान है, यानी पूरा लोक है। मन परे ज्ञानी, क्योंकि हमारी ज्ञान मार्गणा है, तो मन परे ज्ञानी और केवल ज्ञानी जीव में संभव पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। मन परे ज्ञानी में जैसे अभी हमने आभिनिबोधिक वगैरह में देखा था, पर उसमें तो 8/14 दे वो बात यहाँ लागू नहीं होगी, मन परे ज्ञानी तो 12वें गुणस्थान तक के मनुष्य ही है।
ये अधकर्म का हम लोग में आभिनिबोधिक ज्ञानी में स्पर्शन ओक के समान लोक का संख्या हो जाएगा
नहीं, पूरा लोक होगा ना, अधकर्म में पूरा लोक होता है।
नहीं, आभिनिबोधिक ज्ञानी में
देखो,
हम लोग आभिनिबोधिक श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी की बात कर रहे हैं ना,
कहीं पर भी क्यों ना हो, अधक कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन हाँ, सब लोक होता है।
अच्छा, लोक का एक स्कंद प्रमाण
देखो,
लोक कर्म
पेज नंबर 99।
हाँ, बराबर सॉरी, देखो
अधक कर्म का क्षेत्र सब मार्गणाओं में सब लोक प्रमाण है ना, क्षेत्र ही सब लोक है तो स्पर्शन तो होगा ही होगा, यानी एक भी जीव क्यों ना हो उसका अधिक, उसका जो अधक कर्म का जो क्षेत्र है तो पूरा लोक होता है। हम यहाँ पढ़ रहे थे अपना 105 नंबर पेज पर मन परे ज्ञानी की बात हो रही थी, तो मन परे ज्ञानी में संभव पद कौन कौन से है? प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, वो तो कितना होगा लोक का संख्या का, क्योंकि मनुष्य है ना, मुनिराज है मन परे ज्ञानी, अधक कर्म का पूरा लोक लेना,
मन परे ज्ञानी
अधक कर्म। अभी क्या पढ़ा हमने?
मन अधक की बात कर रहे हैं ना,
सभी मार्गणाओं में अधक कर्म का क्षेत्र पूरा लोक है।
नौकर्म स्कंद की अपेक्षा,
हाँ ख्याल में आई बात, तो अधक कर्म हुआ, फिर क्रिया कर्म, तप कर्म, इरिया, वो तो लोक का असंख्यात भाग, केवल ज्ञानी जीवन में, ये ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी में प्रयोग कर्म होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्रिया कर्म नहीं होगा, तो फिर उनका पद संभव पद कौन से? तीन लोक का असंख्यातवा भाग, बहुभाग और पूरा लोक। ख्याल में यही बात है, यानी वर्तमान में भी उनका क्षेत्र यही है और अतीत काल की भी यही बात होगी। अतीत काल में भी कोई जो समुद्घात करेंगे तो इतनी एरिया में करने वाले, एक जीव भी करे और अतीत काल की अपेक्षा अनंत जीवों ने किया है, इतनी एरिया में किया है। अब संयम मार्गणा के अनुवाद से देखो, ये संयम मार्गणा के भेद बताएंगे आप मयंक भाई? संयम मार्गणा की अपेक्षा जीवों के भेद हमको उसके कौन कौन से होते हैं ऊपर से बताओ, नीचे से कहीं से भी बताओ। हाँ हाँ? देखो एक तो संयमी है और यो जो जिनको संयम नहीं है ऐसे हो गए, तो संयमियों के भेद बताओ पहले। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यास, ये पांच तो संयमियों के भेद हुए। जिनको संयम नहीं है, संयमासंयम और वो भी नहीं है, तो असंयम, पहले चार गुण स्थान वाले असंयमी हैं, फिर संयमा संयमी है और ऊपर के जो है। अब ये संयम मार्गणा की अपेक्षा इनमें विभाजन करके बताएंगे। हाँ, संयमी कहने से छठे से आगे। हाँ, वो बाह्य में व्रत करने कहने से उनको संयमी नहीं कहते, संयमी कहने से उनका गुणस्थान देखना है। मार्गणा की अपेक्षा उसके भेद बताएंगे, पर संयम कहने से संयत संयत जीव, संयमी जीव छठे से चौदहवे तक है और उसमें एक एक संयम की जो अलग अलग भेद बताए, संयम के भेद बताए, संयम मार्गणा के भेद सात हो गए और संयम के भेद पांच हो गए। हाँ, यानी किसी पहले गुण स्थान वाले ने बाह्य में संयम अंगीकार किया, जिसको हम कहेंगे, जिसको द्रव्य यम कहने की पद्धति है, तो उसको संयमी नहीं कहेंगे। लोग कहते ना ये त्यागी तो है ना, संयमी तो है ना, आप तो तीन तीन बार खाना खाते हो, उनके पास संयम तो है ना। संयम तभी होगा जब अंतरंग में वितरागता उतनी होगी, जो छठे सातवें गुणस्थान के योग्य होगी, तब उनको संयम नाम देंगे। ख्याल में है ना, क्योंकि मार्गणा से हमें तो बिल्कुल न्याय से चलना है। तो संयम मार्गणा के अनुवाद से संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत। अभी संयत कहने से गुणस्थान छह से चौदह, उसमें सारे संयमी आ गए, यानी इन जनरल हो गया। सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत छठे से नौवे गुणस्थान तक के हो गए। परिहार विशुद्धि संयत कहने से छठा और सातवां गुणस्थान केवल। सूक्ष्म सांप्रायिक संयत कहने से दसवां गुणस्थान और यथाख्यात संयत कहने से 11, 12, 13, 14 सब आगे। अपने अपने पदों का स्पर्शन, अभी हमारी मार्गणा जो ये है इनमें अपने अपने पद देखना है, उनका स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्योंकि संयमी कहने से सभी पद आएंगे कि नहीं आएंगे, छो के छो संयत कहें आगे सब आगे। हाँ, तो देखो संयत, सामायिक संयत, नहीं नहीं हम क्या बताए देखते थे, सब पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान सब पर। हाँ, तीसरा, तीसरी लाइन एरिया पथ नहीं होगा, अपने अपने पद एरिया पथ। हाँ, पेज नंबर है 105। देखो हम यहाँ पर जो हमने अलग अलग जो पद देखे थे, कर्म की बात हमने देखी थी ना, छह प्रकार के कर्म लगाते हैं हम, मार्गणाओं में हम देख रहे थे उसका स्पर्शन देख रहे हैं। तो यहाँ तो संयम मार्गणा के अनुवाद से, संयम मार्गणा के अभी हमने भेद गिनाए, तो उसमें संयतों में कौन कौन से पद हो गए पहले ये नक्की करते। तो एक तो प्रयोग कर्म है, समवदान कर्म है, प्रयोग कर्म कहने से वो तो योग वाले देखने कौन सा योग है उसको प्रयोग लिया। समवदान में क्या लिया था, आठ में विभाजित यानी कर्म का आठ में या सात में वगैरह विभाजन होता है तो वो भी है उनके। एक है अधक कर्म, औदारिक शरीर वालों को अधक कर्म होता है। फिर कौन सा है, क्रिया कर्म जो समय दृष्टि है,
छठे सातवें,
हाँ तो चौथे से लेकर सातवें तक उसको क्रिया कर्म होगा। फिर तप कर्म, तप कर्म तो छह से लेकर चौदह तक बताया। इरियापत कर्म ग्यारहवें बारहवें तेरहवें को बताया। तो ये छह प्रकार के जो है पद जिसमें जितने होंगे उसकी बात है। तो कहते कि अपने अपने पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। क्षेत्र में क्या बताया है,
क्रिया कर्म में लोक
का, लोक का असंख्या तो अभाग है, परंतु तप कर्म और इरियापत का
असंख्यात बहुपात
वो तीन पॉसिबिलिटी की लोक इसके अपेक्षा केवली समुद्घात के अपेक्षा, क्योंकि हमने संयत इतना ही कहा है। अगर हम सामायिक और छेदोपस्थापना की और परिहार विशुद्धि की बात करते हैं तो उसमें तो इरियापत आएगा नहीं, लोक का असंख्यात अभाग होगा, क्योंकि संयमी कहाँ रहते तो मनुष्य लोक में रहते, लोक का संख्यात्व भाग होगा। केवल अधक कर्म जो है उसका क्षेत्र भी पूरा लोक है, इसलिए क्षेत्र के समान कहने से क्षेत्र में जो हमने अभी पढ़ा था पहले वही बात इसमें भी लागू होगी। तो सामायिक छेदोपस्थान परिहार विशुद्ध भी हमने देखा। सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, देखो ये तो दसवां गुण स्थान है, उसमें क्रिया कर्म नहीं होगा, बाकी होगे इरियापथ नहीं होगा, तो लोक का असंख्यात अभाग है। यथाख्यात संयत जीवों में, अब यथाख्यात संयतों में क्रिया कर्म नहीं होगा,
नहीं
बाकी होगा,
बाकी के पास।
और जो केवली समुद्घा तो वो भी बात यहाँ लागू हो जाएगी। अब संयता संयत जीवों के पांचवें गुणस्थान वाले हैं। सब पदों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग, क्योंकि पांचवें गुणस्थान में रहने वाले ने मनुष्य और तिर्यंच है, लोक के असंख्यात विभाग में रहते वर्तमान का। अतीत स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह भाग है। अतीत स्पर्शन छह बटे चौदह कहेंगे तो तीर्यंच समय दृष्टि मरकर सोलवे स्वर्ग तक जाने वाले अतीत में कोई ना कोई गए वहां पर, तो उतनी एरिया कवर होती है। किंतु इतनी विशेषता है कि अधक कर्म का स्पर्शन ओग के समान है, यानी पूरा लोक होता है, क्योंकि अधक कर्म जो एक भी जीव कर रहे हैं तो भी पूरा लोक हो जाता है। क्योंकि अधक कर्म में हमने औदारिक शरीर के नौकर्म स्कंधों की बात देखी थी। असंयत जीवों के संभव पदों का, असंयत कहने से पहले से चार गुणस्थान, तो कहने से वो तो पूरा लोक ही कवर होता है उसका। सब पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, तो उसमें तो प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म तो पूरा लोक है ही है। क्रिया कर्म वाला जो है किसमें, असंयतों में क्रिया कर्म यानी चौथे गुणस्थान वाले, तो उसका लोक का संख्या तो वर्तमान का हुआ, अतीत काल आठ बटे चौदह कहना पड़ेगा। विहार भी आया उसी में, उसके मानांतिक भी आ गया। यहाँ लिखा है ना, इतनी विशेषता है। और उसमें क्या, तप कर्म नहीं होगा और इरियापद भी नहीं होगा। इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह भाग प्रमाण है। ख्याल में आई बात, अब यही रुकना पड़ेगा, अभी अपना समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकन सदा देत हो। मयंक भाई।